राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशो यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशो जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशो जन यमुना तीरावन चारी यमुना यमुना तीरावन चारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे बोलिए सभी प्रेम से हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 प्रभुपा जय जय प्रभुपा जय जय प्रभु डिवाइन ग्रेज अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की ऋषि गौर निताय की ऋषि राधा गिरधारी जी की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये
श्रीमद् भागवत नवम स्कंद अध्याय 19 श्लोक क्रमांक 9 10
तस्य तत्र विजह कश्चित् अजा स्वामी छिन्दत् रुषा लम्बन्तं वृष्णं भूयः संदधे अर्थाय योगवित्त तस्य तत्र द्विजः कश्चित् अजा स्वाम्य छिन्नदृशा लम्बन्तं वृष्णं भूयः संदधे अर्थाय योगवित् तस्य तत्र द्विजः कश्चित् अजा स्वाम्य छिन्नदृशा लम्बन्तं वृष्णं भूयः संदधे अर्थाय योगवित् लम्बन्तं वृष्णं भूयः तस्य तत्र द्विजः स्वस्ति लम्बन्तं कृष्णभूय सन्दधेऽर्थाय योगीत् अजा साम्यक्ति न दृशा बन्तं वृषणं भूय माता जी तस्य तत्र द्विजः कस्ति लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्दधे अर्थाय योगवीत्
शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइए। तस्य बकरे का, तत्र तत्पश्चात, द्विजह ब्राह्मण, कश्चित कोई, अजा स्वामी दूसरी बकरी के मालिक ने, अछिन्न बंधिया कर दिया, रुषा क्रोध में आकर, लंबंतम लंबे वृषणम अंडकोश को, भूयः फिर संदधे जोड़ दिया, अर्थाय अपने हित में, योगवीत योग शक्ति में पटु। अनुवाद, बकरी उस ब्राह्मण के घर गई जो एक दूसरी बकरी का मालिक था, और उस ब्राह्मण ने गुस्से में आकर बकरे के लंबे लटकते अंडकोश को काट लिए। तो बकरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर उस ब्राह्मण ने योग शक्ति से उन्हें फिर से जोड़ दिया। तात्पर्य, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर शुक्राचार्य को अलंकारिक रूप में दूसरी बकरी का पति बताया गया है। इससे सूचित होता है कि किसी भी समाज में, चाहे वह मानव समाज से उच्चतर हो या निम्नतर, बकरी बकरे जैसा ही संबंध होता है, क्योंकि पुरुष और स्त्री का भौतिक संबंध संभोग का है। यन्मैथुनादि गृहमेधि सुखम ही तुच्छम। शुक्राचार्य पारिवारिक मामलों के आचार्य थे, जिसमें बकरे के वीर्य को बकरी में स्थानांतरित करना होता है। कश्चित अजा स्वामी शब्द निश्चित रूप से बताते हैं कि शुक्राचार्य किसी भी तरह ययाति से श्रेष्ठ न थे, क्योंकि दोनों ही शुक्र या वीर्य द्वारा उत्पन्न पारिवारिक मामलों में रुचि रखते थे। शुक्राचार्य ने सर्वप्रथम ययाति को श्राप दिया था कि वह वृद्ध हो जाए जिससे वह संभोग न कर सके, किंतु जब उन्होंने देखा कि इससे उन्हीं की पुत्री को दंड मिलेगा, तो उन्होंने अपनी योग शक्ति से ययाति के पुंसत्व को फिर से स्थापित कर दिया। चूंकि उन्होंने अपनी योग शक्ति का प्रयोग पारिवारिक मामलों में किया था भगवान की अनुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं, अतः एवं योग के जादू का अभ्यास बकरा बकरी के संभोग के समान था। योग शक्ति का समुचित प्रयोग भगवान साक्षात्कार में करने में होना चाहिए, जैसा कि साक्षात भगवान ने भगवत गीता में संस्तुति की है कि योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते योमाम समे युक्त तमो मतवम। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा पूर्वक मुझ में विश्वास करता है और दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे भली भांति जुड़ा रहता है और सब में श्रेष्ठ है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदांतिकम्। वंदे श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी, राधा गिरधारी जी, गौर निताय और प्रभुपाद जी के सानिध्य में आप सब वैष्णवों के बीच में श्रीमद् भागवत पर कुछ बोलने का इस दास के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वैसे कहा जाता है कि संसार में तीन चीज सबसे दुर्लभ है, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम और महद आश्रयत्वम। ये तीन चीज सबसे दुर्लभ है। उसमें सबसे पहला है मनुष्यत्वम। यह मनुष्य शरीर प्राप्त होना सबसे दुर्लभ बात है। हम बार बार सत्संग के माध्यम से सुनते हैं कि किस तरह से यह जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते अंत में उसको यह मनुष्य शरीर मिलता है, और कौन से 84 लाख प्रकार के शरीर, यह भी प्रभुपाद जी ने पद्म पुराण के श्लोक से बताया है। जल जानव लक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशति कृमियो रुद्र संख्यका पक्षिणाम 10 लक्षणम 30 लक्षाणि शा पशव 4 लक्षाणि मानुष। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में परिभ्रमण करते करते अंत में इस जीव को यह मनुष्य शरीर मिला है। तो इतना दुर्लभ है, और उसमें भी मनुष्य शरीर में भी भारत भूमि में मनुष्य जन्म, यह तो इससे भी दुर्लभ है। देवता लोग भी भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान से कामना करते हैं कि हे प्रभु, हमको इस भारत भूमि में आप मनुष्य शरीर दे दीजिए। श्रीमद् भागवत में पंचम स्कंद में जहां सब अलग अलग खंडों का, वर्षों का वर्णन है, वहां पे देवता लोग भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं, कहते एतद एव हि देवा गायन्ति देवता लोग इस प्रकार से गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या?
अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न येशाम सिदुत स्वयं हरि।
आश्चर्य के साथ कहते कि अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, इस लोगों ने किम कारी शोभनम, कौन से शुभ कर्म किया है कि जिसकी वजह से साक्षात भगवान श्री हरि विदुत स्वयं हरि प्रसन्न येशाम, साक्षात भगवान श्री कृष्ण इन सब लोगों के ऊपर इतने प्रसन्न है। तो मानो देवताओं को पूछा जाए कि आपको कैसे मालूम हुआ कि इन सब लोगों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न है, आप कैसे कह सकते हो कि भगवान कृष्ण इन सभी लोगों के ऊपर प्रसन्न है? तब देवता लोग कहते हैं
ये जन्म लब्धम ऋषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्प्रिहाहिन।
इसके ऊपर भगवान कृष्ण प्रसन्न इसलिए है कि ये जन्म लब्धम ऋषु भारत आजिरे, क्योंकि इन लोगों को एक तो मनुष्य जन्म मिला है और वह भी भारत आजिरे, भारत के प्रांगण में, जिससे ये लोग मुकुंद सेवोपहिकम भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। अन्य अन्य जगह पर जन्म प्राप्त होने पर भगवान की सेवा नहीं हो सकती है, लेकिन भारत भूमि में जिसको मनुष्य जन्म मिला है वह भगवान मुकुंद की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। स्प्रिहा ही न, इसकी कामना तो हम लोगों को भी है, प्रभु हमको यह देवता फेवता का शरीर नहीं चाहिए, आप कृपा करके एक बार भारत भूमि में मनुष्य जन्म दे दीजिए। तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है यह मनुष्य जन्म, तो मनुष्यत्वम दुर्लभ है और उससे भी दुर्लभ है मुमुक्षत्वम। जिन लोगों ने इस संसार के विषयों में और संसार में संसार की नश्वरता और उसकी दुख रूपता के बारे में जान लिया है और जानने के बाद इस संसार से और इसके विषयों में से मुक्त होने की कामना है, उसको मुमुक्षा कहते हैं। संसार के विषयों से और दुखों से छूटने की जो मन के अंदर हृदय के अंदर अभिलाषा जीव में जागृत होती है तो उसे मुमुक्षा कहते हैं। प्रायः इस संसार में लोग 99% लोग ऐसे हैं कि जिस लोगों को संसार में और उसके विषय में दुख रूपता मालूम ही नहीं है, इस संसार के विषय में ही सुख मान रहे हैं। यद्यपि यह संसार दुखालयम अशाश्वतम दुख रूप है, उसके विषय तो और भी दुख रूप है, हमारे आचार्य गौर किशोर दास बाबा जी नवद्वीप धाम में रहते थे तो एक समय वो कितने दिनों तक वो सरकारी शौचालय रहता है जाहिर शौचालय उसमें रहे। आसपास के लोगों ने आकर बहुत समझाया कि महाराज आप इसमें क्यों रहते, पूरे गांव की बदनामी होगी कि ये गांव वाले पूरे सब मिलकर एक संत का ख्याल नहीं रखते जिससे इस साधु को इस तरह रहना पड़ता है शौचालय में। तो बहुत कहने के बाद गौर किशोर दास बाबा कहते हैं कि भाइयों, संसारी लोगों के संग में संसार के विषयों की जो दुर्गंध आती है उससे तो यह दुर्गंध अच्छी है, यह शौचालय की दुर्गंध अच्छी है विषयों की दुर्गंध से, इसीलिए तो उसके प्रणाम मंत्र में कहते हैं साक्षात वैराग्य मूर्त है। तो प्रायः लोग जानते नहीं है कि इस संसार के विषय है जिसमें हम सुख बुद्धि कर रहे हैं वही हमारे दुख का कारण है। मैत्रेय जी कहते हैं दुखेषु सुख मानिना, इस दुख को ही सुख मान रहे हैं और सुख मान रहे हैं तो फिर उससे छूटने का कोई प्रयास की तो बात ही नहीं है। अगर दुख को दुख मानते तब उससे छूटने का कुछ प्रयास किया जाता, लेकिन दुख को ही सुख मान रहे हैं तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, लेकिन उससे भी दुर्लभ है उसमें मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा प्राप्त होना, और उससे भी दुर्लभ है महत आश्रयत्वम, किसी महापुरुषों के चरणों का आश्रय प्राप्त करना। भक्तों, हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली है कि इस घोर कलयुग में सभी और पाखंड ही पाखंड दिखाई देता है, उसमें भी हम सबको प्रभुपाद जी का आश्रय मिला हुआ है। बहुत दुर्लभ बात है इस कलयुग में। नारद जी महाराज भागवत महात्म्य अंतर्गत पद्म पुराण में कहते हैं कि कलयुग में संप्रदाय से आई हुई वैष्णवता तो देखना भी दुर्लभ है, कहीं दिखाई भी नहीं पड़ेगी। संप्रदाय अंतर्गत वैष्णवता, और दशम स्कंद में सुखदेव जी जहां पे वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं, वहां पे कहते हैं कि जैसे वर्षा ऋतु में संध्या के शाम के समय घनघोर रात्रि में आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है और अंधकार इतना रहता है कि पृथ्वी के ऊपर सिर्फ चमकते हुए झुगनू दिखाई देते हैं बारिश में, क्या कहते हैं हमारे गुजराती में उसे, आज्ञा कहते हैं वो जीव जंतु जो लाइट प्रकाश फेंकते हैं। तो यद्यपि रात्रि में प्रकाश का मुख्य स्तोत्र है तारा और चंद्रमा, लेकिन बादलों ने उसको आच्छादित कर दिया, इसलिए झुगनू दिखेंगे। वैसे ही कलयुग में सनातन धर्म वैष्णव धर्म को पाखंड रूपी बादल आच्छादित कर देंगे, ढक देंगे, और इस पृथ्वी पे सर्वत्र झुगनुओं के जैसे प्रकाश देने वाले पाखंडियों के छोटे बड़े मत दिखाई देंगे, कहीं भी सनातन धर्म वैष्णव धर्म दिखाई नहीं देगा। और ऐसे घोर कलयुग में भी किसी पुण्य की वजह से या तो भगवत कृपा से हम लोगों को ऐसे सच्चे सद्गुरु प्रभुपाद जी और उसके आश्रित भक्तों का आश्रय मिला हुआ है, तो यही सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो इसलिए कहते हैं कि संसार में सबसे दुर्लभ मनुष्यत्व है, उससे भी दुर्लभ मुमुक्षत्व है, और इससे भी दुर्लभ महद आश्रयत्वम, किसी महापुरुष सद्गुरु वैष्णव का आश्रय ग्रहण करना, और उसमें भी दुर्लभ है उस सद्गुरु वैष्णव जिसका हमने आश्रय लिया है उसको सेवा के द्वारा प्रसन्न कर लिया जाए। महापुरुष सद्गुरु वैष्णव का आश्रय तो मानो हम सबको मिला हुआ है, हम सब प्रभुपाद जी और उसके शिष्यों के आश्रित है, लेकिन हम सब में भी कोई ऐसा विरला ही होगा जो सेवा के द्वारा गुरु और प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर ले, तो इससे भी दुर्लभ। और इस समय प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ अवसर है पूरा महीना गीता मैराथन, तो बस और कुछ प्रयास इसमें कुछ ऐसा क्या कष्टदायक कार्य नहीं है। व्यासपीठ पर बैठ के प्रवचन तो करना नहीं है, भगवत गीता वितरण करना है, सब कर सकते हैं। और इतनी छोटी सेवा से प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाते, और वो भी सबसे श्रेष्ठ प्रसन्नता उसकी यही है कि कोई भक्त भगवत गीता वितरण करे, और प्रभुपाद जी नहीं चैतन्य महाप्रभु भी इससे प्रसन्न होते हैं। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में जहां पे वर्णन है कि नित्यानंद प्रभु और सभी नवद्वीपवासी भक्त हर साल नवदीप से नीलाचल जगन्नाथपुरी जाते थे रथ यात्रा के समय, और 4 महीने वहां पर रुकते थे, और 4 महीना वहां पर रुक के जगन्नाथ जी का दर्शन, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, उसका सानिध्य, महाप्रभु के संग में कथा कीर्तन, और अंत में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन। 4 महीने तक यह सब करके अंत में रथ यात्रा का दर्शन करके सब भक्त वापस नवदीप आ जाते थे। हर साल का यही क्रम था कि आते थे रथ यात्रा के समय, 4 महीने वहां पे रुकते थे और बाद में नवदीप चले जाते थे। तो एक समय जब सभी भक्त नवदीप से रथ यात्रा का दर्शन, नीलाचल से रथ यात्रा का दर्शन करके वापस नवदीप जा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को एक एक करके मिलकर सबको विदा दे रहे थे। तो उस समय नित्यानंद प्रभु से कहते महाप्रभु कि हे गोसाई, आप अगले साल से नवदीप में नहीं आना। प्रतिवर्ष नीला चले तुमी ना आसीबा। हे गोसाई, आप प्रति साल नीलाचल नहीं आना। तो क्यों? तब कहते गौड़ देशे रही मोर इच्छा सफल करीबा। आप बंगाल में ही रहकर वहां पे प्रचार कीजिए, बस यही मेरी इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद प्रभु से कि प्रभु आप हर साल यहाँ पे मत आइए, नीलाचल मत आइए, आप बंगाल में ही रहिए और वहां पर कृष्ण भावना का प्रचार कीजिए, यही मेरी इच्छा है। तो मानो नित्यानंद प्रभु नीलाचल आते हैं तो उसमें उसको कितना लाभ है। सबसे पहला तो उसको धामवास मिलता है, दूसरा जगन्नाथ जी का सानिध्य, चैतन्य महाप्रभु का संग, महाप्रभु के संग में कथा और कीर्तन, और जगन्नाथ जी का दर्शन, उसका जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन। इतने सारे लाभ नित्यानंद प्रभु को मिल रहे हैं, फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप जगन्नाथपुरी मत आइए, आप नीला वहां पे नवदीप में ही रहिए। इसका तात्पर्य क्या हुआ? रूपा जी लिखते हैं कि इसका तात्पर्य हुआ कि अगर कोई भक्त भगवान के धाम में जाए और वहां पे वास करे, वहां पे रहे, उससे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु इस बात से प्रसन्न हो गए कि वह भक्त जहां पर है वहां पर ही रहकर प्रचार करे, यही चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, और इसी से वह ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और मैं 2-3 साल पहले सुना था कि हमारे गिरधारी मंदिर से ही कुछ वरिष्ठ भक्त श्रीधाम वृंदावन में गए थे वहां पे रहने के लिए, धामवास करने के लिए। और जब महाराज जी को मालूम हुआ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, कि ये सब ये लोग भक्त यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, तो गए उसके पास और भगाया उसको कि यहाँ रहना है, जाओ प्रचार करना है, भागो यहाँ से। तो मुंबई सूरत किसी को अलग अलग भेज दिया। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, स्पष्ट प्रभुपाद जी ने लिखा है, और इस प्रसंग से भी स्पष्ट है कि कोई भक्त अगर वृंदावन या मायापुर या जगन्नाथपुरी जाए और वहां पे वास करे, उससे ज्यादा अच्छा है, उससे ज्यादा महाप्रभु प्रसन्न होते हैं कि स्थाने स्थिता, जहां पर है वहां पर रहकर प्रचार करे। और चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ इस बात से भगवान तो प्रसन्न है ही, खुद भगवत गीता में कहते हैं कि यह भगवत गीता का ज्ञान जो संसार के लोगों में बांटेगा तो वह भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वेश्य असंशय, तो उसको मेरी पराभक्ति अर्थात प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, और अंत में मामे वेश्यसी, वह जीव मुझको प्राप्त करेगा और उसमें कोई संदेह नहीं है, असंशयम। और उसके साथ साथ अगले श्लोक में भगवान यहां तक कहते हैं, न तस्मा कश्चिन मनुष्येषु अन्य प्रियः मे। ऐसे भक्त से ज्यादा जो भक्त मेरी इस भगवत गीता का संसार के लोगों में वितरण करता है, उसको इस ज्ञान का दान देता है, उससे प्रिय कोई मुझे है नहीं, भूतकाल में हुआ नहीं है और भविष्य में होगा भी नहीं, वही भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है कि जो इस गीता का वितरण करते हैं। तो बस भक्तों इतना ही कहना है कि गीता वितरण करने से चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण दोनों प्रसन्न होते, दोनों की यही इच्छा है। और हमारे लिए तो उससे भी बड़ी बात है कि प्रभुपाद जी उससे सबसे ज्यादा प्रसन्न है इस बात से, क्योंकि भगवान से भी अधिक उसके भक्त वैष्णव की सेवा को अधिक माना गया है। भागवत में जिसको वैष्णव के गुरु बताए गए हैं, वह भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम। इस संसार में सभी लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार सेवा करते हैं। कोई कोई लोग गरीबों की सेवा करते हैं, कोई कोई अनाथों की सेवा करते हैं, कोई कोई वृद्धों की सेवा करते हैं, कोई पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, तो कोई कोई लोग देवी देवताओं की सेवा करते हैं। सभी लोग अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं और उस सब सेवा में सबसे श्रेष्ठ सेवा है तो वह है विष्णुर आराधनम परम। भगवान विष्णु की सेवा करना सबसे श्रेष्ठ सेवा है, लेकिन उससे भी कोई बड़ी सेवा, उससे भी कोई श्रेष्ठ सेवा है तो तदीया नाम समर्चनम। जो भगवान विष्णु के हो गए ऐसे वैष्णवों की सेवा करना उससे भी बड़ी सेवा है। तो हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी बात है कि इस सेवा से भगवान के साथ साथ गुरु प्रभुपाद जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, और जब प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, तो उस जीव के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जिसने अपने वैष्णव गुरु को प्रसन्न कर लिया उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उसको जो भी इच्छा होगी वह सब प्राप्त होगा। भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है कि चिंतामणि लोक सुखम। अगर किसी को मानो चिंतामणि प्राप्त हो गए तो उसके लिए संसार का कोई भी पदार्थ, संसार की कोई भी चीज उसके लिए दुर्लभ नहीं है। चिंतामणि जो ऐसा मणि है जिसको चिंतन करने मात्र से जो भी चीज चाहिए वह प्रकट कर देती है। और अगर किसी को स्वर्ग की संपदा चाहिए तो कहते हैं कि तो इसके लिए सुरद्रु। अगर किसी को कल्प वृक्ष प्राप्त हो गया तो उसके लिए स्वर्ग की कोई भी चीज दुर्लभ नहीं रहेगी। चिंतामणि प्राप्त हो गई तो इस संसार की सब चीज प्राप्त हो जाती है, और कल्प प्राप्त हो गया तो उसको स्वर्ग की सभी चीज प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर कोई इससे भी बड़ा निकले कि मुझे इस लोक की कोई चीज नहीं चाहिए, स्वर्ग की कुछ चीज नहीं चाहिए, कहां तक कहे ब्रह्मलोक तक कुछ भी नहीं चाहिए, हमको तो वैकुंठ में मिलने वाला प्रेम धन चाहिए, वैकुंठ चाहिए, तो कहते कि वैकुंठ प्राप्त करने के लिए तो ये कोई भी चीज, चिंतामणि हो, कल्प वृक्ष हो, या कोई भी देवी देवता हो, किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि जीव को वैकुंठ प्रदान कर सके। इसके लिए एक ही उपाय है, प्रयच्छति गुरु प्रीते वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर कोई जीव अपने गुरु को प्रसन्न कर ले तो उसके लिए योगियों को भी दुर्लभ वैकुंठ वह गुरु दान में दे देंगे, सदा से प्राप्त हो जाए। योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। तो बस भक्तों इतना ही कहना है कि हम सब लोग मिलकर प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए एक महीने तक पूरी शक्ति लगाकर तन से धन से मन से किसी भी तरह भगवत गीता वितरण करने से करे, जिससे प्रभुपाद जी और भगवान तीनों ये भौतिकवादी लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो बोर्ड लगाते हैं 2 in 1, एक तीर दो काम, लेकिन इसमें तो 3 in 1 हो जाएगा। एक कार्य से सिर्फ गीता वितरण से चैतन्य महाप्रभु, गिरधारी जी और प्रभुपाद जी तीनों प्रसन्न हो जाएंगे, 3 in 1। तो इसलिए सबको प्रयास करना चाहिए और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए गीता वितरण करूं। तो यही संदेश है अभी इस गीता मैराथन पे आप सबको, मुझको भी। और आइए अब 15-20 मिनट का हमारे पास समय है तो इस भागवत के श्लोक के ऊपर कुछ विचार किया जाए। तो प्रस्तुत प्रसंग तो सब भक्त यहाँ पे जानते ही है, लेकिन मेरे जैसे कोई कोई साप्ताहिक भक्त है उसके लिए संक्षेप में कह देता हूं कि यहाँ पर ययाति महाराज का चरित्र चल रहा है, जो महाराज नुहुष के द्वितीय पुत्र थे। जो प्रथम पुत्र थे वह तो भगवान के महान भक्त थे और इसलिए जानते थे कि राज्य लेने में इसमें फंसने के बाद भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने राज्य लेने से इनकार कर दिया। तब ययाति महाराज को पूरे भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया और ययाति महाराज जब राजा हो गए उसके बाद एक दिन जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो कथा तो बहुत लंबी है कि किस तरह से शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी जो कुएं में गिरी हुई थी उसको बाहर निकाला और फिर दोनों के बीच संबंध हुआ और शुक्राचार्य जी ने ययाति महाराज और देवयानी शादी करी। लेकिन उसमें एक शर्त थी, देवयानी ने असुरों के राजा वृषपर्वा जी की पुत्री शर्मिष्ठा को उसकी 1000 सखियों के साथ दासी बनकर उसके साथ आना ऐसा वचन मांगा था। किसने? शुक्राचार्य ने वृषपर्वा जी से। तो शर्त मुजब जब ब्याह हुआ तो शर्मिष्ठा भी अपनी 1000 सखियों के साथ देवयानी के साथ दासी बनकर सेवा करने के लिए गई और शुक्राचार्य जी ने भी लग्न के समय ययाति महाराज से कहा था कि यह शर्मिष्ठा आपके साथ दासी बनकर आ रही है, इसलिए उसके साथ दासी के जैसा ही व्यवहार करना, उसको पत्नी बनाने की चेष्टा नहीं करना, उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करना। तो शादी हो गई ययाति महाराज की देवयानी से और बाद में थोड़े साल बीतने के बाद देवयानी से ययाति महाराज ने 2 पुत्र प्राप्त किए, यदु और तुर्वसु। और उसके बाद एक दिन एकांत में शर्मिष्ठा ने ययाति महाराज से प्रार्थना की पुत्र प्राप्ति के लिए। तो यद्यपि ययाति महाराज को शुक्राचार्य जी की शरत याद थी, उसकी बात याद थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर कोई स्त्री संतान प्राप्त करने की इच्छा रखती है तो उसकी यह कामना, उसकी यह मांग धर्म से युक्त है, गलत नहीं है। तो इसलिए धर्म को जानते हुए ययाति महाराज ने शर्मिष्ठा से भी 3 पुत्र प्राप्त किए, तुर्यु, अनु और पुरु, दुह्यु, अनु और पुरु, ये 3 पुत्र। तो कुल ययाति महाराज के 5 पुत्र हो गए, यदु, तुर्वसु, दुहियु अनुवर पुरु, ये पांच पुत्र हुए। लेकिन देवयानी को जब मालूम हुआ कि उसके पति ने शर्मिष्ठा से तीन पुत्र प्राप्त किए हैं, तब वह इतनी क्रोधित हो गई कि ययाति महाराज को भला बुरा कहते हुए अंत में अपना सब बिस्तरा पोटला पैक करके अपने पिताजी के घर जाने के लिए निकल गई। महाराज जी यहाँ पे कहते कि स्त्रियों का सबसे बड़ा बल यही है कि कुछ हुआ, सामान पैक किया और चल दिया। तो ययाति महाराज कामवश होकर पूरे रास्ते में उसको मनाते हुए, उसके चरण पकड़े गिरगिराते हुए अपने ससुर के घर तक पहुंच गए देवयानी के पीछे पीछे उसको मनाते हुए। लेकिन फिर भी देवयानी नहीं मानी और जब वहां पे पहुंची और शुक्राचार्य को यह बात मालूम हुई कि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो अत्यंत क्रोध में आकर ययाति को शाप दे दिया कि हे कामी ययाति, जा तू वृद्ध हो जा, वृद्धावस्था तेरे शरीर को घेर ले। अभी कोई व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक नष्ट हो जाता है तो वह व्यक्ति सामने वाला और अपना दोनों का नुकसान कर देता है। शुक्राचार्य जी ने शाप दिया ययाति महाराज को, तो उससे उसका तो नुकसान हुआ लेकिन अपनी पुत्री का भी नुकसान हो गया, उसका पति वृद्ध हो गया। तो बाद में जब ययाति महाराज ने प्रार्थना की तो शुक्राचार्य जी ने एक व्यवस्था कर दी उसके लिए कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी वृद्धावस्था ले ले और अपनी युवा अवस्था तुमको दे दे तो फिर तुम युवा हो सकते हो। और तब ययाति महाराज वहां से आए अपने राज्य में और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र यदु महाराज के पास गए और कहा कि बेटा, मैं अभी तुम्हारी माता के साथ विषय भोगते हुए तृप्त नहीं हुआ हूं, इसलिए तू अपनी युवानी मुझे दे दे और मेरी वृद्धावस्था ले ले। तो ययाति महाराज की बात सुनकर यदु महाराज ने स्पष्ट इनकार कर दिया और दूसरे सभी भक्तों ने इसी तरह वृद्धावस्था लेने से इनकार कर दिया। और तब सबसे छोटा पुत्र पुरु महाराज ने अपने पिता की इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने पिताजी की वृद्धावस्था लेकर अपनी युवानी उसे दे दी। और तब सुखदेव जी कहते हैं कि पुरु महाराज, जिसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, पितृ धर्म को जानते थे, इसलिए पुरु महाराज के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि धर्मविद, वह धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए उसने अपने पिता की बात मान ली। लेकिन यदु महाराज ने अपने पिता की बात का स्पष्ट इनकार कर दिया था, तो फिर भी यदु महाराज के लिए भी भागवत में आया है कि यदुस्त धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तम। यदु महाराज धर्म को जानने वाले थे और इतना ही नहीं, धर्म पे चलने वाले थे। कोई कोई लोग होते हैं धर्म को जानते हैं लेकिन उस पे चलते नहीं है। दुर्योधन के वंशज, दुर्योधन भगवान से स्पष्ट कहता है, हे केशव, जानासी मैं धर्मम न च में प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरा मन उसमें प्रवृत्त नहीं होता है, और जानासी मैं अधर्मम न च में निवृत्ति, और मैं यह भी जानता हूं कि अधर्म क्या है लेकिन मेरा मन उससे निवृत्त नहीं हो रहा है, मेरा मन उसको छोड़ नहीं रहा है। तो इसी तरह यदु महाराज धर्म को जानते थे लेकिन धर्मशीलस्य, धर्म पे चलते भी थे, धर्म का पालन भी करते थे और वह भी नितराम निरंतर। तो यदुस्त नितराम धर्मशीलस्य, निरंतर धर्म पे चलने वाले थे। और भी एक पे एकादश स्कंद में जहां पे दत्तात्रेय भगवान अपने 24 गुरु की बात करते हैं तो वह संवाद दत्तात्रेय जी और यदु महाराज के बीच का है। और एकादश स्कंद में भगवान स्वयं उद्धव जी से यह बात कह रहे हैं, जो संवाद यदु महाराज और दत्तात्रेय जी के बीच में हुआ था। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वमुख से यदु महाराज के लिए कहते हैं कि यदु धर्म वित्तम, यदु जो धर्म को जानने वाले। तो पुरु महाराज ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन किया, इसलिए उसके लिए शब्द आया धर्म वित्तम। लेकिन यदु महाराज ने अपनी पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया, स्पष्ट इनकार कर दिया, फिर उसके लिए दो बार आया। और एक बार तो साक्षात भगवान कहते कि यदु धर्म वित्तम, तो ये बात कैसे संभव हो सकती है? दोनों का कार्य बिल्कुल विपरीत, और फिर भी दोनों के लिए, यदि पुरु महाराज के लिए आता है धर्म वित्तम तो यदु महाराज के लिए नहीं आना चाहिए, और यदु महाराज के लिए आता है तो पुरु महाराज के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों ने एकदम विपरीत कार्य किया था। लेकिन फिर भी दोनों के लिए प्रश्न है यहाँ पे कि दोनों के लिए। तब कहते हैं कि पुरु महाराज ने तो धर्म का पालन किया था, लेकिन उसने लोक धर्म का पालन किया था। पितृ आज्ञा का पालन किया था तो धर्म तो है, लेकिन वह लोक धर्म है, इसलिए उसके लिए आया धर्म वित्तम। लेकिन यदु महाराज ने लोक धर्म को छोड़कर भगवत धर्म का पालन किया था, इसके लिए उसके लिए दो बार आया। क्योंकि यदु महाराज के पास से जब ययाति महाराज ने अपनी युवावस्था मांगी, तो यदु महाराज सोचते थे कि मेरे पिताजी मुझसे युवावस्था मांग रहे हैं, क्यों? भजन करने के लिए तो मांगते नहीं है, भोग भोगने के लिए मुझसे युवानी मांग रहे हैं, तो अगर मैंने उसको अपनी युवावस्था दे दी और मैं वृद्ध हो गया तो वृद्धावस्था में गठपण मां गोविंद भजाए नहीं, मुझसे भजन होगा नहीं वृद्धावस्था में, और पिताजी युवावस्था लेकर वो भी भजन करेंगे नहीं, वो भोग भोगेंगे। तो इस बात का विचार करके यदु महाराज ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, क्योंकि लोक धर्म के लिए अगर भागवत धर्म छोड़ दिया जाए तो यह तो घोर अपराध है। हाँ, एक बात है कि भागवत धर्म के लिए लोक धर्म छोड़ दिया जाए तो वह शास्त्र सम्मत बात है। गोकर्ण महाराज अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को उपदेश देते समय कहते हैं कि पिताजी, अब आप संसार के कार्य में रहते रहते वृद्ध हो गए हैं, और अब धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, इन सब लौकिक धर्म को छोड़ दीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, इस लोक धर्म को छोड़ दीजिए पिताजी, और धर्मम भजस्व वैष्णव धर्म में स्थित हो जाइए। तो स्पष्ट है कि भगवत धर्म वैष्णव धर्म के लिए लोक धर्म छोड़ा जा सकता है। और मानो कोई पूछे कि क्या प्रमाण है कि अगर किसी ने भागवत धर्म के लिए लोक धर्म को छोड़ा हो और लोक धर्म को छोड़ने के बाद भी उसे भगवत प्राप्ति हुई हो, भगवान मिल गए हैं, ऐसे प्रमाण है कोई? तब हमारे गुजरात के मेहता नरसिंह जी कहते हैं कि एक नहीं, पांच पांच प्रमाण है मेरे पास के जिसने लोक धर्म को छोड़ने के बाद भी भगवान को प्राप्त कर लिया है। सबसे पहला है, प्रहलाद जी ने अपने पिता को छोड़ दिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। भरत जी महाराज ने अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया भगवान के लिए। बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया। और चौथा कौन सा है? बलि, प्रहलाद, गोपियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया भगवत प्राप्ति के लिए। और भी एक बाकी है, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया भगवान के लिए। तो पांचों लोगों ने लोक धर्म को छोड़कर भागवत धर्म अपनाया तो सबने भगवत प्राप्ति कर ली। तो इसीलिए यदु महाराज के लिए भी आया है नित्रान धर्मशीलस्य। और बाद में तो जब ययाति महाराज अपने छोटे पुत्र पुरु महाराज की युवावस्था प्राप्त कर ली और युवानी लेने के बाद 1000 साल तक उसने देवयानी के साथ अनेक प्रकार से विहार किया और अनेक प्रकार से भोगों को भोगा। और बाद में जब उसको इस संसार के विषयों के प्रति वैराग्य आया तो एक दिन बहुत अफसोस करते हैं कि भगवान की माया कितनी प्रबल है कि एक स्त्री के वश में होकर मैंने अपने मनुष्य जन्म के इतने हजारों साल ऐसे भोग में पाप कार्य में गवा दिए। तो ऐसा उत्कृष्ट वैराग्य आया और उस दशा में वह अपनी पत्नी देवयानी से एक कथा कहते हैं, रूपक कहते हैं, बकरी और बकरे का दृष्टांत देकर। और हकीकत में ययाति महाराज बकरी और बकरे का दृष्टांत तो सिर्फ बहाना है, वह अपनी आत्मकथा सुना रहे हैं, उसे अपनी कथा लेकिन बकरी और बकरे का दृष्टांत देकर सुना रहे हैं। तो मानो यहाँ पे प्रश्न हो कि ययाति महाराज को यही दृष्टांत आया बकरी और बकरे का, गधा और गधे का भी दे सकते थे, कुत्ता और कुत्ती का भी दे सकते, कई ऐसे भोगी जीव है, तो बकरी का ही दृष्टांत उसने क्यों दिया। तब कहते हैं कि बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं और अजा का एक अर्थ है माया। भगवान का एक नाम है अज, जो अजन्मा है इसलिए अज, और उसकी माया है इसलिए अजा। और अजा माया भी है और बकरी भी है। तो मानो ययाति महाराज कहते हैं कि हे देवयानी, तुम्हारी माया में फंसकर मैं बकरे की तरह बेबे बेबे करते हुए इतने सारे जन इतने सारे साल मैंने गवा दिए। और बकरी तो प्रत्यक्ष माया का ही स्वरूप, और भी एक दृष्टांत रामायण में मिलता है ऐसा ही। आपने शायद सुना होगा कि दशरथ महाराज की जो 3 पत्नियां थी उसमें बीच वाली कैकई माता, भरत जी की माता, और कैकई माता के पिता जिसका नाम था अश्वपति, जो कैकई देश के राजा थे, और एक समय अपने राजमहल में बैठे थे, प्रसाद पा रहे थे और उसकी पत्नी उसके में बैठी हुई थी। तो प्रसाद लेते हुए अश्वपति महाराज ने देखा कि वहां से 2 चींटी पसार हो रही थी, तो एक दूसरे के साथ चींटियां निकलती है तो मुंह टकराती है, तो मुंह टकरा के कुछ बात की उस दोनों ने, और उसकी बात सुनकर अश्वपति महाराज को हंसी आ गई। तो उसकी हंसी देखकर वह जो उसकी पत्नी थी तो कहती है कि स्वामी आप क्यों हंसे। तो अश्वपति महाराज कहते हैं कि नहीं देवी कुछ बात नहीं, नहीं कुछ तो है, बिना कारण थोड़े आप हंस रहे हैं। तो कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। तो वो स्त्री ने तो जीत पकड़ ली, क्योंकि उसके मन में ऐसा भाव था कि यह मुझ पे हंसे है, शायद भोजन में कुछ ऐसा हो गया होगा जिसके कारण ये मुझ पर हंस रहे है। तो उसने जीत पकड़ ली। और ये अश्वपति जो राजा थे उसको एक ऋषि ने ऐसा वरदान दिया था कि वह पशु पक्षी कीट पतंग सबकी भाषा समझ सकते थे, लेकिन उस ऋषि का वरदान होने के साथ साथ उसने यह भी कहा था कि तुम जो भी बात पशु पक्षी कीट मकोड़े जो भी किसी की बात सुनोगे और वह बात अगर किसी को बता दी तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए अश्वपति महाराज बता नहीं रहे थे, लेकिन वह रानी ने इतनी जिद पकड़ ली, अंत में कहती है कि अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं विष खाकर आत्महत्या कर लूंगी। और तब अश्वपति महाराज सोचते हैं कि अगर ये मर गई तो स्त्री हत्या का पाप सर पे आएगा तो खाली खाली स्त्री हत्या का पाप सिर पे चढ़ाने से अच्छा है मैं मर जाऊं। तो उसने सोचा कि मरना ही है तो यहां पे क्यों मरे, काशी में जाके क्यों न मरे, क्योंकि काशी के बारे में शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो भी जीव काशी में शरीर छोड़ता है तो अंत समय में भगवान शंकर उस मरने वाले जीव के कान में राम मंत्र का उच्चारण करते हैं, राम नाम बोलते हैं, जिससे वह मरने वाला जीव भगवान नाम के प्रभाव से मुक्त हो जाए। तो अश्वपति महाराज सोच रहे हैं कि मरना ही है तो काशी में जाके क्यों न मरे। तब वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि ठीक है देवी, मैं तुझे बताऊंगा लेकिन यहां पे नहीं, तो काशी में जाके बताऊंगा। तो कि ठीक है वहां चले। तो राजा ने तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया, रथ मंगाया, रथ के ऊपर सवार होकर दोनों दंपति निकले काशी जाने के लिए। और रास्ते में एक जगह पे एक बकरा और बकरी खड़े थे और खड़े खड़े दोनों बात कर रहे थे, और उसमें वह बकरी अपने स्वामी उस बकरे को कह रही थी कि स्वामी वहां पे दूर एकदम हरा हरा घास है और उसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, आप कैसे भी करके वह घास मुझे लाकर दीजिए। तब बकरा कहता है कि बकरी वहां पे बहुत गहरा कुआं है और उस कुएं की वजह से कोई भी पशु वहां पे चरने के लिए नहीं जाता है और इसलिए वहां पे बहुत सुंदर सुंदर घास है और अगर मैं गया तो कुएं में गिर के मर जाऊंगा। तो बकरी कहती है नहीं, जो भी आपका होना है हो, मरे या कुछ भी करे, मुझे वह घास लाके दीजिए। और इतना सुनते ही वह बकरा चार पांच कदम पीछे गया और दौड़ के एक जोर से लात लगाई उस बकरी को, साली मरना है तो मर, जो भी करना है कर, लेकिन मैं वहां पे जाने वाला नहीं हूं, तू जाना है तो खा ले और मरना है तो मर, जो करना है कर, मैं थोड़ा अश्वपति राजा हूं कि तेरी बात में आ जाऊंगा। और इतना सुनते ही वो अश्वपति महाराज तो समझते थे पशुओं की भाषा, तो बकरे की बात सुनकर अपनी रानी से कह दे क्या कह रही थी तू, मर जाऊंगी, मर जा अभी की अभी मर जा, लेकिन मैं तुझे नहीं बताऊंगा। रथ से नीचे उतार दिया और रथ लेके चले अपने राजमहल की ओर, और वह उसकी पत्नी मनाते मनाते महल तक आ गई, स्वामी क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो एक बकरा ऐसा निकला जो माया से मुक्त हो गया था, ओरिजिनल बकरा। यह दो पैर वाले बकरे माया से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन वह चार पैर वाला बकरा माया से मुक्त हो गया, उसकी पत्नी के बात में नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पे ययाति महाराज बकरा और बकरी का दृष्टांत दे रहे हैं और कहते हैं कि हे देवी, मेरे ही जैसा एक कामी बकरा था और एक दिन जल में विचरण कर रहा था, तो उसी समय एक कुएं में गिरी हुई बकरी को उसने देखा, तो उसको बाहर निकालने के लिए उस बकरे ने अपनी सिंह की नोक से वहां पे खुदाई की और खोद करके उस बकरी को कुएं से बाहर निकाला, और बाद में उस बकरी की मीठी मीठी बातों को सुनकर उसके साथ उस बकरे ने शादी कर ली, और दोनों बकरा और बकरी कितने समय तक साथ में रहकर संसार के विषयों को भोगते थे। लेकिन एक दिन जब उस बकरी को मालूम हुआ कि उसका पति बकरा इतना कामी है कि अन्य कितनी बकरियों से प्रेम करता है, कितनी बकरियों के साथ उसका संबंध है, ययाति महाराज अपना ही दृष्टांत दे रहे हैं लेकिन बकरा कह रहे हैं, वह बकरा इतना कामी है, अन्य कितनी बकरियों के साथ उसका संबंध था, और इस बात का जब उसकी पत्नी जो बकरी थी उसको मालूम हुई यह बात, तो वह उस बकरे अपने पति बकरे को छोड़कर अपने पहले के मालिक अपने मूल स्वामी के पास चली गई, और यह बकरा बैबे बैबे करता हुआ उसको मनाते हुए उसके पीछे गया। तो यहाँ तक की बात, और बाद में आगे की बात कहते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बाद में ययाति महाराज क्या कहते हैं कि वह बकरी अपने पहले के मालिक मूल स्वामी के पास चली गई, और यह बकरा कहते कि सोपी चानुगत स्त्रैण वह बकरा भी अनुगत उस बकरी के पीछे पीछे चलता हुआ गया। क्यों? तो कहते स्त्रैण क्योंकि वह स्त्री कामी था और कृपणा और अत्यंत दीन और दुखी था उस बकरी के वियोग में, और इसलिए ताम प्रसादी तुम उस बकरी को प्रसन्न करने के लिए अपनी बकरे की भाषा में बोलता हुआ कुर्वन नीड विड़ाकारम अर्थात अपनी भाषा में उस बकरी को समझाते हुए उसके पीछे पीछे गया। लेकिन न शक्नो पति संधि तुम न संधि तुम, लेकिन उस बकरी को मना नहीं सका। कहां तक गया? तो के पति पूरे रास्ते तक उसको मनाते मनाते वह बकरा गया, लेकिन उस बकरी को मना नहीं सका। और जब वह बकरी अपने मूल मालिक के घर पर पहुंच गई तो तस्य तत्र द्विजः कश्चित, तो वहां पे कोई एक उसका मालिक द्विजः ब्राह्मण अर्थात शुक्राचार्य, तस्य तत्र कश्चित द्विजः वहां पे एक ब्राह्मण था, और उसने अजा अजा स्वामी जो उस बकरी का मूल मालिक था यह बात सुनी तो रुषा अत्यंत क्रोधित हो गया और छिन्न लंबंतम वृषणम, और उस ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उस बकरे का अंडकोश काट दिया। और जब उसको मालूम हुआ कि अरे इससे तो मेरी ही बकरी का नुकसान हो गया है, तो तब भूय संदद फिर से उसके अंडकोश को जोड़ दिया, अर्थात उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई तुम्हारी युवानी अपनी युवानी तुम्हें देके तुम्हारी वृद्धावस्था ले ले तो फिर तुम युवान हो सकते हैं। तो कहते कि फिर से जोड़ दिया, और ऐसा कैसे किया? तो कहते कि वह द्विज योगविद, योग को अर्थात ऐसी सब चीज को जोड़ने वाली चीज को अच्छी तरह से जानता था। और फिर तो ययाति महाराज आगे बहुत सुंदर कहेंगे जिसको भागवत में ययाति गीतम कहा है, तो बहुत सुंदर प्रेरणादायक प्रसंग है और सब भक्तों के मुख से आपको यहाँ पे सुनने भी मिलेगा। तो मैंने संक्षेप में यथामति कुछ कहने का प्रयास था। वैसे तो कल शाम को ही फोन आया वासुदेव प्रभु का कि प्रभु जी आपको सुबह में क्लास देना है। मैंने कहा प्रभु जी दो तीन दिन बाद दीजिए, क्योंकि मुझे तैयारी करने में मैं कुछ ऐसा तो स्वतः सिद्ध तो है नहीं, अंदर से निकलता रहे, तुम्हें तो तैयारी करने का समय ले। नहीं प्रभु जी कोई है नहीं, आपको सुबह में क्लास देना है, तो इसलिए कुछ तैयारी करने का मेरे पास समय नहीं था। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य से कुछ विस्तार से उसके ऊपर कह नहीं पाया हूँ, तो इसलिए आप सब भक्त क्षमा कर दीजिए, और बोलने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए भी आप सभी भक्तों से क्षमा याचना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रश्न किसी का हो तो मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, यहाँ पे वरिष्ठ भक्त जो भी हो उससे पूछ लीजिए। हरे कृष्णा।
अनाउंसमेंट नहीं है।